शांति। आप लोग बहुत ही शक्तिशाली हो, हमको लंदन से खींच करके भारत में बुलाया है और शांतिवन से पांडव भवन। भारत में जो भावना है वेरी पावरफुल, उस भावना में शुद्धता आ जाएंगी तब सोचो, अभी भी सत्युग आ जाएगा। यही आप देखो, सारा भारत भावना के ऊपर चलता है, चाहे जितने बड़े पोस्ट वाले हैं मिनिस्टर ने, लेकिन भक्ति में वो नमन करेंगे, रिस्पेक्ट रखेंगे, कभी ऐसा काम नहीं करेंगे जो कुछ उनके तरफ माना वो समझे हमको श्राप मिलेगा। ये जो भावना होती है वो आपको विदेश में ऐसा नहीं मिलेगा। विदेश के गवर्नमेंट लॉ माना लॉ, अब भल कोई भी रिलीजन से हो, लॉ माना लॉ। एक है भारत में प्यूरिटी के लिए भावना, इसीलिए इतने समय से सन्यास धर्म ने भारत की प्यूरिटी को जमा के रखा है, थमा के रखा है। इनके बिना तो कहां होता भारत। दूसरा है कि बहनों के प्रति भी भावना है और एक कल्चर है रिस्पेक्ट का, नमस्ते माना इंग्लिश में कहते हैं आई बाउ टू द डिवाइन इन यू। एक बारी हमने रतन मोहिनी दादी जी को पूछा था कि आप भारत और विदेश में अंतर क्या देख रहे हैं, तो इन्होंने बोला हाँ तीसरी भावना जो है भगवान के प्रति भावना, जबरदस्त भगवान के प्रति भावना। तो इन्होंने बोला जो यहां पे भगवान के प्रति भावना है वो आपको कोई और देश में नहीं मिलेगा, और विदेशियों में नंबर वन गुण है ऑनेस्टी, हर बात में जो है जैसी बात है वो स्पष्ट बताएंगे, कुछ कहानी के रूप में नहीं बनाएंगे, छिपा करके नहीं, जो है जैसा है वैसे बता देंगे। अभी विदेशियों में वही भगवान की भावना आ जाए नंबर वन जा सकते हैं, और भारतवासियों में वो ही सच्चाई आ जाए तो वो भी नंबर वन जा सकते हैं। करेक्ट, इतना एक्यूरेट जवाब दिया उन्होंने। तभी हम इतने साल से दादी के साथ रहे हैं विदेश में, और सच में दादी का तो धर्म ही सत्यता और कर्म में सच्चाई, साफ दिल, इतना वर्णन करती रहती थी और अपने आप को एक ट्रूथ का पिलर बना दिया था। दादी ने सत्यता की देवी थी, मूर्ति थी, लेकिन सच्चा पुरुषार्थ क्या है वो हमको नजदीक से दिखाई दिया। काम चलाओ का पुरुषार्थ नहीं है, किसी को खुश करने के लिए मोटे रूप से बस दिखावा के लिए, हाँ पहुंच गए ठीक है ना, सभी जा रहे हैं तो मैं भी जाऊं ना, ऐसे नहीं। दिल से पुरुषार्थ, और ऐसे नहीं थोड़े समय के लिए पुरुषार्थ फिर थोड़ा आराम ले लो, चलो बहुत पुरुषार्थ किया ना, चलो थोड़ा हॉलीडे ले ले वे। कभी देखो 60 साल की उम्र में दादी जी विदेश में आए, 1974 जून, ठीक है 61-62 उम्र थी दादी की। यहां पे सेवाओं की वृद्धि हो रही थी, 69 के बाद जब अव्यक्त बाप दादा का पार्ट शुरू हुआ तब सेवाओं की कितनी वृद्धि हो रही थी, कितने स्टूडेंट्स, 300 का क्लास था, ये छोड़ करके तीन के क्लास में आ गई, और वो भी डेली स्टूडेंट नहीं, वीकेंड में आने वाले, मैक्सिमम 10 होंगे। और ये कभी नहीं सोचा है दादी ने, अरे मैं क्या करूंगी, मैं तो वो छोड़ के आई, अब ये 10 लोग क्या करूंगी, अरे क्यों मुझे यहां भेजा है, यहां तो कुछ है ही नहीं। इसको सच संकल्प करेंगे, कहेंगे नहीं। सत्यता और निश्चय दोनों पार्टनर से। दादी का इतना अटूट निश्चय था बाबा के महावाक्य पर, बाबा ने भेजा है, ये बाबा का काम है। दादी को थोड़ी रूल बुक था, प्लान थोड़ी दिया गया, अच्छा आपको इस देश में जाना है पहले, फिर इस देश में जाना है, कुछ नहीं था। और आप देखो 62 की उम्र से 104 तक 120 देशों में 5,500 सेंटर्स का फैलावट किया। कोई आदमी का रिटायरमेंट स्टेज में इतना काम करके मुझे दिखाए, लास्ट तक हड्डी सेवा। कभी ऐसे नहीं सोचा मैं बुढ़ी हो गई हूं, मैं क्या करूं, चलो थोड़ा देखना पड़ता है ना। इसको हम सच संकल्प नहीं कहेंगे। सत्यता एक बहुत डीप टॉपिक है, निश्चय इसका फाउंडेशन है। आज के जो प्रश्न उत्तर था, किसको याद है, बाबा ने आज दो प्रश्न मुरली में बताए थे, उसका उत्तर भी दिया, किसको याद है? पहला प्रश्न क्या था, सबसे ऊंची मंजिल कौन सी है, कौन सी है? और दूसरा प्रश्न, अवस्था में डावाडोल क्यों होता है? करेक्ट। और पहला जो असर पड़ता है वो बुद्धि, बुद्धि की स्टेबिलिटी पे, बुद्धि में हलचल शुरू होती है। देखो हम पुरुषार्थ करना चाहते हैं और क्लासेस सुन के एक बड़ा लक्ष्य मिलता है, और हम बुद्धि से, अच्छा इसका प्लान कैसे बनाए, वो कैसे करें, ज्यादातर बुद्धि। लेकिन जब बुद्धि रजोगुनी होती है और सतोगुनी लक्ष्य होता है, तो रजोगुनी बुद्धि से सतोगुनी लक्ष्य तक नहीं पहुंचेंगे। जब तक आपने अपनी बुद्धि को साफ शुद्ध नहीं बनाया है, सतोगुनी नहीं बनाया है, तो आपको पुरुषार्थ में मेहनत लगेगा। प्लान बनाएंगे, अच्छा मेरे थोड़े समय के लिए हो रहा है, फिर नहीं हो रहा है। सतोगुनी बुद्धि वाला, एक एक बाप के महावाक्य दिल को टच करने वाले, उसको अंदर से ऐसे महसूस होगा कि मुझे कोई शक्ति दे रहा है, महावाक्य से शक्ति मिलती है, उमंग बढ़ता है, प्रेरणा मिलती है, वो कभी हार नहीं खाएगा कोई भी बात में। क्योंकि हम हार किस आधार से खाते हैं? क्या कोई और हमको हार खिलाता है क्या? किस वजह से हम हार खाते हैं? कभी इस बात को एनालाइज किया है अंदर में? अपनी खुद की इच्छाओं के आधार से हम हार खाते हैं, हमारी ही इच्छाएं हमको हार खाती हैं। हमने किस बात में एक्सपेक्टेशन रखा, वो हुआ नहीं, हार महसूस किया, हमारे एक्सपेक्टेशन से हम हार खाए। उस समय वो दिखाई नहीं देता है कि मेरी कोई सूक्ष्म इच्छा यहां काम कर रही है। अपने आप को राइट समझते हैं, मियां मिट्ठू समझते हैं। मैं क्यों ये बातें बता रही हूं? ऑनेस्टी की गहराई, खुद के साथ ऑनेस्ट रहना है मानक क्या। अपने आप को ऐसे ज्ञान को कुट कुट करके अंदर बिठाना है, बिल्कुल निरसंकल्प अवस्था, कोई भी बात में प्रश्न न उठे। रजोगुनी बुद्धि की निशानी संशय बुद्धि, थोड़ा सा हल्का सा क्वेश्चन मार्क उठेगा, होगा नहीं होगा, पहुंच पाऊंगी नहीं पहुंच पाऊंगी, उसके साथ साथ निराशा, तमोगुनी बुद्धि, माना गाड़ी ही रुकी पड़ी है, गाड़ी को चलने के लिए भी उमंग उत्साह नहीं है। चलो जो मिलेगा, जो भी भाग्य में है चलाएंगे। अभी आप एक सारे क्लासेस को सुन रहे हो और आपको एक सतोगुनी अवस्था का लक्ष्य मिल रहा है और रजोगुनी या तमोगुनी बुद्धि से सुन रहे हो, तो क्या नतीजा होगा अंदर से? इसीलिए पहले अपनी बुद्धि की परख चाहिए, वेरी डीप अंडरस्टैंड, मेरी बुद्धि किस क्वालिटी की है। और अंदर से देखो, जब निश्चय, थोड़ा निश्चय की, स्व में थोड़ी निश्चय की कमी होती है तो खुद के प्रति संशय उठता है ना, मैं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, करेक्ट? बाबा में निश्चय की कमी है तो कौन सा प्रश्न उठेगा मन में? कौन से संकल्प उठेंगे? हाँ, बाबा मदद करेगा या नहीं?
कभी कभी बाबा क्या तो बने हैं और कुछ ऊपर नीचे कभी हो जाता है, तो उस समय हम डिस्टर्ब हो जाते हैं कि बाबा का बनने में ऐसा क्यों होगा। तो कुछ अलग है,
वो शायद ड्रामा की बात में आ जाते हैं। लेकिन जब बाबा में निश्चय की कमी है, उसका क्या मन में क्या उठता है? क्या ये मेरे लिए नहीं है? और हाँ, खुशी भी नहीं है, वो तो है, लेकिन कोई साथी चाहिए, किसी का सपोर्ट चाहिए, किसी के ऊपर डिपेंड होना, सही बात है ना? और बुजुर्ग होते हैं, सोचते हैं अरे हम बुजुर्ग हो गए, हमको कौन मदद करेगा, कैसे जिएंगे सेंटर में, इतना धोखा खाते हैं हम। जब ड्रामा में निश्चय की कमी होती है तो कौन सा प्रश्न उठता है? करेक्ट, ऐसा क्यों हो रहा है? माना हर एक परिस्थिति में क्वेश्चन मार्क, क्यों हो रहा है? और जब भी हमारी क्या है, बहुत समय से हम आदती बने हैं ड्रामा को कंट्रोल करने के लिए, मैनिपुलेट करने के लिए, ताकि हमको जो चाहिए वो मिले। ठीक है, ड्रामा आपके सामने कुछ और लाता है, आप कुछ और चाहते हो, लेकिन जब तक आपकी चाहत पूरी नहीं होंगी तब तक आप छोड़ेंगे नहीं। तो ये अंदर की जो इच्छाएं होती है ना, वहां से ही प्रश्न उठते हैं, ये क्यों हुआ? अरे ये प्रश्न, सवाल उठने का क्या मतलब है? मुझे कुछ और चाहिए क्या? मैंने उसी समय जो सीन ड्रामा मेरे सामने लेके आई, मैंने इसको स्वीकार नहीं किया कि इसमें भी कई, चलो कुछ कल्याण भरा हुआ है, देखे तो सही क्या कल्याण भरा हुआ है। तुरंत फटाफट बुद्धि चले, और फिर चौथा सब्जेक्ट, जब आपसी में निश्चय की कमी होती है तो क्या प्रश्न उठता है दिमाग में? कौन से संकल्प उठते हैं दिमाग में? इतने साल से ज्ञान में चल रहा है, इसका व्यवहार देखो, और
ये चेंज नहीं हुआ तो मैं कैसे चेंज
होऊंगा, ये भी चेंज हुआ तो मैं कैसे चेंज, और आपसी में निश्चय की कमी होती है संगठन में तो कौन से संकल्प उठते हैं? मैं इसके साथ नहीं चल सकती हूं, डिफिकल्ट लगता है, इसके साथ रह पाऊंगी नहीं रह पाऊंगी, मुझे ये चाहिए, मैं इसके साथ रहूंगी इसके साथ नहीं रहूंगी, वो पार्शियलिटी होती है ना, जिसमें फमिलियरिटी शुरू हो जाती है। गए काम के, बाबा आपको यूज नहीं कर सकता है उस हालत में, और फिर जो भी आप सेवा करेंगे, जब ये फुल निश्चय नहीं होता है तभी क्या होता है, अभिमान सेवा का नाम लेकर के अपना काम करता है, अच्छी तरह से काम करता है, बाहर मुक्ता की सेवा, शोई सेवा, और जो रियल सेवा है अपनी अवस्था को जमा करके स्थिरत रखना और औरों को बाबा के छत्र छाया में लाना, वो भासना देना, वो नहीं होगा। देखो निश्चय की जब कमी होती है क्या होता है, ये टेबल देखा है ना, इसमें से एक ही पाए टूट जाती है तो मुझे सपोर्ट देंगी क्या? नहीं देख सकती है ना मुझे सपोर्ट, मैं एक ग्लास पानी भी रखूंगी तो भी गिर जाएगा टेबल, इतना डेलिकेट डार्लिंग हो जाएगा टेबल। तो आप अपने जीवन में निश्चय का ऑडिट करो, आपकी अवस्था सेंसिटिव क्यों है, कोमल क्यों है, निश्चय की कमी है कई जगह पे, सिचुएशन के हर एक अपना पार्ट बजा रहा है, एक्यूरेट बजा रहा है, राजधानी में सब चाहिए, यज्ञ बाबा चला रहा है, सेवा भी बाबा करा रहा है। हाँ, आपको किसने परमिशन दिया किसी का जजमेंट करने के लिए? ट्राइब्यूनल तो लास्ट में बैठेंगी, हमारा काम जज ज्यूरी बनने का काम नहीं है, हमारा काम है अंदर इतना खुद को अचल डोल बनाना कि अंत में बुद्धि एक पल भी हिले नहीं, बल जितना भी हलचल हो बाहर, ये आपका फाइनल टेस्ट पेपर है। अभी भी वो कंप्लेंट्स आएंगे, अरे बहन जी मेरे सेंटर में ये हो रहा है, सॉरी मैं आपके साथ डायरेक्ट बात कर रही हूं, ठीक है, आई होप यू डोंट माइंड। ट्रूथ इज बिटर, हाँ थोड़ी कड़वी लगेंगी आपको, लेकिन सच्चा पुरुषार्थ करना है तो खुद को सीधा करना है, बस जैसे संकल्प मन में आए उसको एक्सेप्ट कर दो, मनमोजी बन करके चलो, चैलेंज करो खुद को कि ये संकल्प उठा क्यों, ये प्रश्न उठा क्यों, अपने आप को सीधा करो। और ये मुझे बहुत वंडर की बात लगी कि जब हम दादी के पास आते थे ना, तो होता है सेवा के फील्ड में है वैरायटी, संस्कार स्वभाव है, डिफरेंस है, कुछ ना कुछ तो होगा, ठीक है। तो दादी हमको कायम कहती थी इसका दोष नहीं है, बेचारे अपने स्वभाव से मजबूर है, इसका दोष नहीं है। मैं इस बात को सुनकर के मुझे इतना टच होता था कि सच में मैंने जब रियलिटी में देखा तो हर एक आत्मा अपने संस्कार स्वभाव के जंजीरों में बंधी हुई है। दादी ने तो उस समय बोला था 99% ब्राह्मण अपने पुराने संस्कार स्वभाव के आधारित से चल रहे हैं, जैसे वो बस किया है ना, बहुत समय से ऐसे हो गई है ना आदत, तो ऐसे ही चलते रहो, बस थोड़ा कुछ शॉपिंग कर लो, थोड़ा कुछ देखो, थोड़ा कुछ चार धाम की यात्रा कर लो, खुश हो जाओ, घर जाओ वापस, सेम ओल्ड स्टोरी। मैं कहती हूं दादी 62 उम्र से 102 में जितना पुरुषार्थ किया है खुद के ऊपर कि लास्ट तक प्रकृति ने दादी के एक एक विश को पूरी की है, दादी की आखिरी विश थी कि मेरे अंतिम संस्कार में कौड़ी मिसल खर्च ना हो। आपको पता है कितना खर्चा हुआ? 6,000 रुपया। वो चंदन का हार होता है ना उसके ऊपर। दादी क्यों? क्योंकि दादी की सारी लाइफ नियमों पे चली है और अपने नियम को तोड़ा नहीं है। नियम का बल इतना जमा किया है कि लास्ट तक प्रकृति ने सहयोग दिया वो नियम को पालन करने के लिए। दादी जी इतनी बड़ी दादी जी लंदन में, उसकी पर्सनल गाड़ी भी नहीं थी। क्यों? इतने सारे बाबा के बच्चे हैं, मुझे कोई ना कोई बाबा का लाल, प्रभु का लाल मिल जाएगा, मुझे याद है, और सेवा भी होंगी, कंपनी भी देंगे, मुझे क्यों चाहिए गाड़ी, फालतू खर्चा। दादी की कोई भी पर्सनल गाड़ी नहीं थी। तो जो व्यक्ति अपने नियम पे चला है और कभी भी तोड़ा नहीं है, हालांकि कितने लोग आए होंगे, दादी मैं आपके लिए गाड़ी खरीद करके मैं देता हूं आपको, नहीं नहीं चाहिए भाई, हाथ जोड़ती थी। कोई और होता सोचता, हां हां बुजुर्ग हो गए ना, यहां से यहां नहीं पैदल, कहा ठीक है गाड़ी ले लो, कुछ भी हो जाए नियम को छोड़ना नहीं है, तब जाकर के बल मिलता है। और दादी को प्रकृति का बल इस वजह से था, 94 तक संगठन में आकर के योग कराती थी। तो यू नो हम देखते थे उनको क्लोजअप, ठीक है, अंदर आपको फील होता था कि ये आत्मा सदा अलर्ट और एवर रेडी है, हमको ये फील होता था। कभी ऐसे नहीं फील होता था कि दादी दूसरे सोच में व्यस्त है, वो फीलिंग भी नहीं आती थी कि दादी व्यस्त है। कभी कभी आप किसी भाई बहनों को देखो, बहुत व्यस्त लगते हैं, इधर उधर भागो, इधर, बहुत व्यस्त लगते हैं। हमको दादी के पास शेड्यूल फुल था, लेकिन फीलिंग नहीं आती थी कि ये व्यक्ति व्यस्त है। एक मिनट भी कोई व्यक्ति सामने आया, फुल अटेंशन, जैसे वो ही व्यक्ति उसकी दुनिया है, और एक मिनट में संतुष्ट कर देती थी। ये क्या है? एक शुद्ध बुद्धि की कमाल है, निश्चय बुद्धि की कमाल है। क्योंकि ये सारा यज्ञ शुरू से लेकर के आज दिन तक निश्चय के आधार से चला है और बड़ा है। संबंध में ट्रांसफर, कौन सी एनर्जी ट्रांसफर होती है? निश्चय का। अभी तो मैं बोल रही हूं, आपको फीलिंग क्या आ रही है? स्ट्रेंथ की, पावर की, निश्चय की। अभी आपने ही खुद की बुद्धि को ऐसा हल्का छोड़ दिया तो पैरेट फैशन तो ज्ञान तो बोलते रहेंगे, शक्ति भक्ति को ट्रांसफर नहीं होंगी। समझ में आई बात? इसीलिए अभी बिजी रहो अंदर के डेप्थ में जाकर के, शुद्ध बुद्धि, सतोगुनी बुद्धि, हर बात में ऐसा परिवर्तन कर लो। ना मुझे मम्मा की बातें बहुत अच्छी लगती थी जब दादी सुनाती थी। कुमारिया थी उन दिनों में, कई ऐसी कुमारिया थी जो नटखट थी, ठीक है, लेकिन क्लास पे टाइम पे नहीं उठते थे, वो नहीं करते थे, एक बारी किया, दूसरा बारी किया, फिर तीसरी बारी मम्मा उनके कमरे में जाती थी, कंबल ऐसे करती थी, अरे देविया उठो, मंदिर के द्वार खुल गए हैं, आपके भगत इंतजार कर रहे हैं। ये है सतोगुनी बुद्धि का कमाल। ऐसे नहीं, अरे आप लोग कितने अलबेले हो, नहीं लेजी हो, उठो उठो। समझ में आई? ऐसा पुरुषार्थ करना है जो बुद्धि सतोगुनी बुद्धि होकर के किसी को आप ऊंचा उठा सकते हो मंजिल तक। हम जब विदेश में थे, कोई देश में थे, एक भाई था, और उस देश में हमने एक नेशनल कोऑर्डिनेटिंग टीम बनाई थी, और वही एक ही भाई था उस टीम में, और सभी माताएं थी, और काफी ग्रीस में था, काफी स्ट्रांग माताएं, अपने ओपिनियन वाली माताएं। और ये बेचारा भाई, 30 साल की उम्र थी इसकी, सबसे छोटा वही था ग्रुप में, इसका तो कोई सुनता ही नहीं था, ठीक है। तो बहुत रॉयल व्यक्ति था, कभी इतना ज्यादा आवाज से नहीं बोलता था, बहुत उसका मैनर्स में रॉयल्टी थी, लेकिन बीच बीच में क्या होता था, अपसेट हो जाता था, क्योंकि कभी कभी माताएं थोड़ा जोश में आकर के उनकी बातें नहीं मानते थे, तो बेचारा अपसेट हो जाता था। तो मैं साक्षी होकर के ये देख रही थी, ये खेल देख रही थी, तो मेरे पास आता था हर बात, अब से ये बात हुई, अब ये बात हुई, फिर मैंने सोचा चलो अभी ये मेरे सामने आई है, अभी मुझे ऐसा यादगार, मुझे थोड़ी ऐसा यादगार चाहिए इस आत्मा के साथ कि अपसेट होकर के ही मेरे पास आए और मैं उसको मनाती रहूं, मुझे ऐसा संबंध नहीं चाहिए। अभी मैं स्टोरी पूरी करती हूं, मैं स्टोरी थोड़ी पूरी करती हूं फिर बताती हूं। तो मैंने अंदर से सोचा मुझे इस आत्मा के साथ ऐसा व्यवहार नहीं चाहिए, मैं उसकी कमजोरी ठीक करने के लिए यहां बैठी नहीं हूं। तो मैं बाबा के कमरे में गई और मैं बहुत अंदर से डीप में, मुझे क्या दिखाई दे रहा है इस आत्मा में, तो मुझे एक प्रिंस का दृश्य सामने आया। तो मैं गई इसके पास, मैंने बोला चलो हम एक गेम प्ले करते हैं आपस में, तुम जब भी मेरे पास आएगा अपसेट होकर के, तो मैं आपको एक बहुत सुंदर रीति से रिमाइंडर दूंगी कि हे प्रिंस, तुम अपने तख्त से गिर गया है, अभी तख्त पे वापस बैठ जाओ, ठीक है, ये आपका सिग्नल है अपने आपको ठीक करना। तो मैं भी बच गई, क्योंकि मैं इसकी कहानी में क्यों जाऊं, ये मेरा धंधा नहीं है किसी के कर्म बंधन में इंटरफियर करना, मुझे बस केवल रिमाइंडर देना है आप कौन हो। वो फेथ है, एक दो में फेथ है। अभी ये हम एक दोनों को ऐसा सहयोग देंगे, सतोगुनी दृष्टि का सहयोग देंगे, स्वर्ग तो ऐसे ही आ जाएगा, अभी स्वर्ग की महसूसता होंगी आपको, नहीं? ठीक है, आप अभी यहां से जा नहीं रहे हैं अपने सेवा स्थान पे, सेवा के लिए जा रहे हैं।
ऐसा भी हो सकता था कि अगर वो अपसेट था तो फाइंड आउट द रीजन, कुछ रीजन जिसको हम थोड़ा रेक्टिफाई कर सकते हैं या उसको एडवाइस कर सकते हैं, ऐसा नहीं ऐसा,
दैट इज
कर्म बंधन था, ठीक है, फाइन,
बट दैट इज नॉट माई बिजनेस। ये मैंने दादी में बहुत देखा है। देखो दादी ने सारे विदेशी भाई बहनों को, जो भी निमित्त है, 120 देशों में जो निमित्त है, उनको खड़ा किया है पिछले 60 वर्षों से। कैसे किया है इन सारे, और अपनी अवस्था भी साथ में बनाई, कर्मातीत अवस्था तक भी पहुंची, कैसे, सभी के कहानियां में जाकर के फिक्स इट करते रहेंगे तो आप ही फंस जाएंगे। क्योंकि पता है अभिमान का तीसरा निशानी ये है, अभिमान की पहली निशानी है मैं राइट हूं, मैं सबसे बेस्ट हूं, दूसरी निशानी है अभिमान की मैं कुछ भी नहीं हूं, अनवर्दीनेस जो कहेंगे ना, मैं नालायक हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं, मुझे कौन पूछेगा, कौन देखेगा, अरे चलो छोड़ दो। और तीसरा रूप है अभिमान का कि मैं जाकर अंदर कुछ चीज को फिक्स कर दूं, रेस्क्यू कर दूं, उसको बचा लूं। लेकिन वो व्यक्ति आपका उसी समय सुनेगा, थोड़े समय के बाद नहीं सुनेगा, क्योंकि हरेक को अंदर से जब तक उसका रियलाइजेशन नहीं आता है तब तक बाहर का जवाब सेट ही नहीं होगा बुद्धि में। अभी किसी से अंदर का आवाज जागृत करना है तो मुझे कैसा बनना है, शांत स्वरूप बनना पड़ेगा ना। जैसे मैंने उस व्यक्ति को बोला तुम एक प्रिंस हो, उसी समय जैसे वो शब्द बोला उसके आंखों में हाँ हाँ मुझे याद आया मैं कौन हूं, अरे ये मैं क्या हूं, अभी तुरंत रियलाइज, अपने आप को ठीक कर दिया। समझ, मैं तो इसकी बात में गई नहीं, ये मेरा बिजनेस नहीं है। एवरीवन हैज सॉल्यूशन फॉर देयर ओन प्रॉब्लम्स, एस्पेशली ब्राह्मिन्स। आई एम सॉरी, ब्राह्मिन्स में तो ज्ञान हम हर रोज सुन रहे हैं, हर एक व्यक्ति के पास अपना सॉल्यूशन है, लेकिन उसको डेप्थ में जाना है। और हमको सतोगुणी दृष्टि रखनी है, उसमें से तुरंत इनको एक सेकंड में रियलाइजेशन आएगा। दिस इज स्पिरिचुअलिटी, नॉट काउंसलिंग।